नमस्कार भारत, 19 फरवरी दिन शुक्रवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। जेएनयू विवाद के बीच सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में झंडा फहराना किया अनिवार्य, विपक्ष ने उठाए सवाल।
Nationalism just doesn't mean holding the flag saying Vande Mataram. It shows in your belief in the constitution, in the institutions which has made this country a democratic setup.
आज जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। गृह मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पुलिस कोर्ट में सबूत पेश करेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की भारत यात्रा से क्या दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी?
अगर ये लोग का एक दूसरा का मनमुटाव का जो जड़ है उसको पहचान कर उसको निदान करने के लिए कुछ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हैं तो दैट वुड बी इनफ।
सुनिएगा ये खास रिपोर्ट, होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कन्हैया देशद्रोह के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं। कल कन्हैया की गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों, बुद्धिजीवियों और कई अन्य संगठनों ने दिल्ली में एक मार्च निकाला। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 21 और 22 मार्च को क्यूबा का दौरा करेंगे। पिछले 90 सालों के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब कोई अमरीकी राष्ट्रपति क्यूबा जाएगा। पिछले साल ही जुलाई में 5 दशकों के बाद अमरीका और क्यूबा के बीच कूटनीतिक रिश्ते बहाल हुए थे और अमरीका ने क्यूबा पर 54 साल के बाद यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों में ढील दी थी। हालांकि अमरीका में मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पार्टी ने ओबामा की इस यात्रा का विरोध किया है और कहा है कि जब तक कास्त्रो परिवार क्यूबा में सत्ता में है तब तक किसी भी अमरीकी राष्ट्रपति को क्यूबा नहीं जाना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए उनकी ईसाइयत पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप के अमरीकी मैक्सिको सीमा पर एक दीवार बनाए जाने के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए पोप ने ये बात कही। पोप ने कहा,
Una persona que pensa soltanto in fare muri,
एक ऐसा शख्स जो हमेशा दीवार बनाने की बात करे ना कि पुल बनाने की, जो लोगों को बांटने की बात करे ना कि जोड़ने की, ऐसा शख्स ईसाई हो ही नहीं सकता। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। उनके इस बयान के बाद ट्रंप ने अपने आप को एक सच्चा ईसाई बताया और कहा कि पोप ने मेक्सिको की शह पर ऐसे शर्मनाक बयान दिए हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एक इराकी अदालत ने अमरीका के पूर्व सैनिक अड्डे पर सेना में भर्ती हुए करीब 1700 लोगों की हत्या के मामले में 40 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी गुट ने 2014 में अमरीका के पूर्व सैनिक अड्डे कैंप स्काइपर पर कब्जा करके करीब 1700 लोगों की हत्या कर दी थी। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की 2 दिनों की बैठक के पहले दिन कोई खास प्रगति नहीं देखी गई। ये बैठक इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये यूरोपीय संघ में ब्रिटेन का भविष्य तय करेगी। बैठक में ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए एक प्रस्ताव देने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस प्रस्ताव पर सभी सदस्य देशों की आम सहमति बहुत जरूरी है। अमरीका उत्तर कोरिया में नए आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के कानून को मंजूरी दे दी है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया था और उसके बाद एक मिसाइल प्रक्षेपण भी किया था। उसी के बाद अमरीका ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बीबीसी समाचार।
तारीख 19 फरवरी दिन शुक्रवार। नमस्कार भारत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। जेएनयू विवाद में फंसी सरकार ने कल देश के हर केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनिवार्य कर दिया है। एक ओर सरकार इसे जरूरी कदम बता रही है तो विपक्ष इसे जेएनयू विवाद से बचने की कोशिश बता रहा है। दूसरी ओर इस समय तिहाड़ जेल में बंद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। पूरे राजनीतिक घटनाक्रमों पर सुशीला सिंह की रिपोर्ट।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चल रही विवादास्पद घटनाएं जहां एक ओर राजनीति पर हावी हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर कल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को परिसर में 207 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रस्ताव दिया। मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में आम सहमति से इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई। जेएनयू में कथित तौर पर लगे राष्ट्र विरोधी नारों के बीच सरकार के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। उधर सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए केंद्र में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह का कहना था,
नेशनलिज्म जस्ट डजंट मीन होल्डिंग द फ्लैग सेइंग वंदे मातरम, इट शोज इन योर बिलीफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैज मेड दिस कंट्री अ डेमोक्रेटिक सेटअप।
देश का झंडा हाथ में लेकर वंदे मातरम गाने का मतलब ही राष्ट्रवादी होना नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब है उन संस्थानों में विश्वास होना जिन्होंने हमारे देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाया है। जो पत्रकारों और छात्रों के साथ हुआ उसे छुपाया नहीं जा सकता। ये फासीवाद भारत में नहीं चल सकता। भाजपा और एबीवीपी इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि फासीवाद को पूरे देश ने ठुकरा दिया है। छात्र जागरूक हैं और ऐसी किसी भी बात को चलने नहीं देंगे।
जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद से ही सरकार पर हमले हो रहे हैं। कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आज कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। कन्हैया कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि उन्हें सुरक्षा का खतरा है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। कल जेएनयू छात्रों के समर्थन में दिल्ली, कोलकाता और पटना के लोग सड़कों पर उतरे तो विरोध में जम्मू और अहमदाबाद में नारेबाजी और प्रदर्शन निकाले गए। दिल्ली में लोगों के साथ सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव का कहना था,
पहली बात तो ये कि 9 तारीख को जेएनयू में जो नारे लगाए गए वो नारे गलत थे। उनका समर्थन करने वाला मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं, लेकिन उसके बाद उसका बहाना बना जिस तरह से हमला किया गया है, ये हमला सिर्फ कन्हैया पे नहीं है, ये हमला सिर्फ जेएनयू नामक संस्था पे नहीं है, ये हमला लोकतंत्र के विचार पे है, जिस विचार का प्रतिनिधित्व जेएनयू करती है, और वो वामपंथ का विचार नहीं है, एक लोकतांत्रिक बहस, असहमति और प्रतिरोध की संभावना का जो विचार है उस पर हमला हो रहा है।
लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी कन्हैया कुमार के लिए हमदर्दी जताई।
कन्हैया के साथ में हमारी भी उतना ही हमदर्दी है, चिराग तो ये जूती हैं, हम तो हमारी भी है, बिहार के हैं और क्या कहते हैं बरैया के हैं, हम लोग सबकी सहानुभूति है, तो इसलिए उसमें कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है वो नौजवान है, शिक्षक है, इलेक्टेड क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है जेएनयू का, और जेएनयू की संस्था जो है बहुत ही लिमिटेड संस्था है। जेएनयू में ने एक से एक अभी भी आप देखिएगा जितने भी आपके डीएम हैं एसपी हैं कोई ना कोई आपको जो है जेएनयू का प्रोडक्ट मिल जाएगा।
इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व लेक्चरर एसएआर गिलानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। जेएनयू विवाद को लेकर अब पूरे देश में बड़े स्तर पर बहस छिड़ी हुई है।
इस मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना और कई संगठनों के गुस्से का सामना कर रही सरकार ने कहा है कि देश के विरुद्ध काम करने वालों को सरकार नहीं छोड़ेगी। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू से बात की और पूछा कि क्या सरकार को अंदाजा था कि जेएनयू इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा।
कोई भी देश का विरुद्ध काम करेगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। संवैधानिक चीजों पे हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इस देश में बैठ करके भारत देश को गाली देगा वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
आपका कहना है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन देशद्रोह का आरोप कन्हैया कुमार पर लगा है जो जेएनयू छात्र संघ के नेता है। अब उनकी गिरफ्तारी पर ही सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उनके पास सबूत ही नहीं है।
सवाल कौन उठा रहे हैं, ये कम्युनिस्ट वाले और कांग्रेस वाले है ना, आम जनता तो नहीं उठा रहे हैं।
नहीं, ये उठ रहे हैं ना सवाल कि सबूत ही नहीं है, किस आधार पर जो है उनको गिरफ्तार किया गया है।
वो सबूत तो पुलिस पेश करेंगे कोर्ट में, लेकिन ये जो जितना भी जो आवाजें उठ रही है ये हिंदुस्तान का आवाज नहीं है ना, ये तो सिर्फ कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाले ही कर रहे हैं। ये तो कम्युनिस्ट वाले का तो अपना हिस्ट्री है देश के खिलाफ काम करने का, और कांग्रेस वाले भी उसी में घुस गए हैं
जी। वही
हम लोग तो सरकार में बैठ कर ये तय नहीं करते ना किसको अरेस्ट करना है किसको नहीं करना है। वो तो कानून जैसे है, कानून को बेस करके हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से वो कार्रवाई करते हैं। हम सिर्फ ये निर्देश देते हैं कि कोई भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए।
लेकिन ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि कन्हैया कुमार को जिसने पीटा है पुलिस ने जो है उन पीटने वालों का साथ दिया है, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, तो एक तरह से सीधे सीधे तो आपके मंत्रालय पर ही आरोप लगा, तो ये तो प्रजातंत्र में तो ये नहीं होना चाहिए ना।
बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर किसी कहीं पे कानून व्यवस्था में कमी है वो कमियां को ठीक करना चाहिए। पुलिस ने अगर कहीं पे कार्रवाई ठीक से नहीं हुआ, वो कार्रवाई ठीक से होना चाहिए और हाथापाई नहीं होना चाहिए। कहीं भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आप विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध करते करते में अगर वायलेंस हो जाए तो वो नहीं होना चाहिए। उसमें कोई डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ये माहौल किसने पैदा किया? ये कांग्रेस वाले और कम्युनिस्ट वाले देश की छवि बर्बाद करने के लिए पहले अस्थिरता में बहुत बात कर चुके हैं, इंटॉलरेंट करके हिंदुस्तान को बदनाम कराया, अब ये हिंदुस्तान को गाली देकर के हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ये सब साजिश हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं।
अब इससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने की सोच रही है?
सरकार वही कदम उठाएंगे जो कानून में लिखा है, और कानून अपना काम करेगा। उसमें हम किसी को अपना मर्जी से तो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं ना।
नहीं तो अब ये बताइए ना कि ये जो जेएनयू वाला मामला है एक तरह से सरकार के गले की फांस बन चुका है, अब उससे निकलने के लिए
अरे कैसे गले का फंदा बनेगा ये? अरे वहां में जेएनयू में बैठ करके भारत को टुकड़े टुकड़े करने का बात करता है, अफजल गुरु जिंदाबाद लगाता है।
तो अफजल गुरु जिंदाबाद के नारे तो कश्मीर में भी लगते हैं।
हाँ तो कश्मीर में भी कार्रवाई होते हैं। देश को बर्बाद करने वाला को जिंदाबाद नारा लगाएंगे और हिंदुस्तान का राजधानी में बैठ करके, ये कोई सच्चा हिंदुस्तानी क्या इसको पसंद करेंगे? आप बताइए।
तो ये जो सबूत हैं कन्हैया कुमार के खिलाफ जो सबूत हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने क्यों नहीं लाए जाते हैं? क्यों अभी तक रुकी हुई है सरकार?
नहीं सरकार क्या है उसमें, तो हमारा जो एजेंसी से काम कर रहे हैं वो सही समय पे कोर्ट पे अपना जो भी मामले हैं वो कोर्ट के सामने में पेश करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं।
चारडी मिनिस्टर जो हैं स्मृति ईरानी वो बैठक लेती हैं और वीसीज को बोलती हैं यूनिवर्सिटीज के कि झंडा फहराया जाए हर यूनिवर्सिटीज पर, तो क्या ये झंडा फहराने से ही देशभक्ति निकल कर आएगी क्या?
बिल्कुल, हर आप फ्रांस में जाइए, जापान में जाइए, चीन में जाइए, अमेरिका में जाइए, कहीं भी जाइए, अपना देश का झंडा हर जगह फहराता है। हम अगर अपना देश का झंडा हिंदुस्तान में नहीं फहराएंगे तो हम कहां फहराएंगे, आप बताइए।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू से बात कर रही थी हमारी सहयोगी सुशीला सिंह। इन दिनों देशभक्ति का मौसम चल रहा है, भारत के संदर्भ में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आजकल जेएनयू से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट तक देशभक्त और देशद्रोहियों की नई नई परिभाषाएं सुनने को मिल रही हैं। लेकिन अमरीका का क्या? क्या उसे भी ऐसी देशभक्ति एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता है या ट्रंप का इंतजार करना होगा? सुनिए वाशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय की डायरी।
सुना है आपकी देशभक्ति काफी उफान मार रही है इन दिनों, मारनी भी चाहिए सर। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश की याद आए। वैसे अमेरिका में भी थोड़ी सी देशभक्ति आप एक्सपोर्ट कर दें तो बहुत अच्छा हो, यहाँ थोड़ी सी कमी पड़ने लगी है। अब देखिए, इतनी बड़ी एप्पल फोन की दुकान चलाते हैं टिम कुक नाम के एक साहब। अब सरकार ने कहा जरा अपनी दुकान में पीछे से घुसने का एक छोटा सा रास्ता खोल दो, हम कभी कभी आया करेंगे। साफ मना कर दिया, ये जरूरत। ऐसे ऐसे देशद्रोहियों को तो ग्वांतानामो जेल भेज देना चाहिए, बल्कि ग्वांतानामो क्यों, पटियाला हाउस कोर्ट में भेज देना चाहिए। ग्वांतानामो के लिए तो बंदा तैयार होकर आता है कि बेड़ियां पहननी होंगी, लात जूते पड़ेंगे, सच झूठ उगलवाया जाएगा। पटियाला हाउस में तो वो चौड़ा होकर जा रहा होता है कि कानून की ढाल लेकर लोकतंत्र को ललकारने। वहां देशभक्तों की फौज जब उन्हें सबक सिखाती है तब जाकर पता चलता है कि देशभक्ति होती क्या है। सर जी, पटियाला हाउस के इन फौजियों को तो इस बार के लिस्ट में एक दो परमवीर चक्र और अशोक चक्र जरूर दीजिएगा। वैसे सर, देशभक्ति पर एक सर्वे करवाने की भी जरूरत है। अमेरिका में भी 2 साल पहले किया गया था, जो 35 के ऊपर वाले थे उनका तो यही कहना था कि झंडे को लहराता देखकर उनका सीना 56 इंच का हो जाता है। लेकिन ये जो नालायक नौजवान नस्ल है उनमें से बहुतों ने कहा कि उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए निशानियों से कहीं ज्यादा अहम है सबके लिए बराबरी का हक, बोलने की आजादी वगैरह वगैरह। यही लोग खतरनाक हैं सर जी, लेकिन अमेरिका में कोई सही तरीके से इन्हें सबक नहीं सिखाता। वैसे कभी कभी कोशिश होती है, लेकिन लोग इंटरनेट पर ही अपना गुस्सा निकाल कर रह जाते हैं। पिछले साल अमरीकी फौज में काम कर चुकी एक फोटोग्राफर ने अमरीकी झंडे को पालने की तरह बनाकर उसमें एक दुधमुहा बच्ची को लिटाया और फौजी वर्दी पहने हुए एक महिला के साथ उसकी तस्वीर ली। क्या जगी थी अमरीकी देशभक्ति उस वक्त। लोगों ने कहा कि उस फोटोग्राफर को खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसने झंडे का अपमान किया है। जैसे आपने देशद्रोह का मुकदमा दायर किया है ना, वैसे ही यहां भी उसके खिलाफ झंडे के अपमान का मामला दर्ज करने की जबरदस्त मांग हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब यहां की पुलिस अपनी दिल्ली पुलिस की तरह चुस्त दुरुस्त थोड़ी है। लेकिन सर, अमरीका को कम मत आंकिएगा, देखिए कहीं नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति बन गए तो आपकी देशभक्ति पीछे रह जाएगी। उन्होंने तो अमेरिका को फिर से महान बनाने की ठान ली है। उनके राज में तो साफ है सर, जिसकी भी देशभक्ति थोड़ी कम नजर आई उसकी तो लग गई। वैसे मुझे लगता है उनसे आपकी अच्छी जमेगी सर, बस एक ख्याल रखिएगा, यहाँ आकर जो आप भारत माता की जय के नारे लगाने लगते हैं ना, वो जरा सोच समझ कर कीजिएगा। थोड़े से सेंसिटिव हैं इस मामले को लेकर यहाँ के देशभक्त, और ट्रंप साहब के राज में तो देशभक्ति का ठेका उन्हीं के पास रहेगा। बाकी तो सर आप खुद ही समझदार हैं। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
तो सर, ब्रजेश उपाध्याय की वॉशिंगटन डायरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। पार्टी के कई उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी ही वापस ले ली, जिसका पार्टी के बड़े नेता भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहीं कल नाम वापसी के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के 8 सदस्य निर्विरोध जीत गए। भाजपा उम्मीदवारों का ये रवैया राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
दो दिन पहले ही मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतने से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद चुनाव में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की नाम वापसी से हैरान रह गई। 3 मार्च को स्थानीय प्राधिकार कोटे से विधान परिषद सदस्यों के होने वाले निर्वाचन के लिए नाम वापसी का कल आखिरी दिन था। भाजपा के 3 सदस्यों समेत कुल 35 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के 8 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए, लेकिन भाजपा के लिए ये सदमे से कम नहीं था। उसके कुछ उम्मीदवार पहले भी नाम वापस ले चुके हैं। भाजपा के नेता इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता विजय पाठक कहते हैं,
नहीं, कुछ जगहों पर इस तरह की स्थितियां हुई हैं, कुछ जगहों पर लोभ में, लालच में इस तरह की स्थितियां हुई हैं, उसकी हम जानकारी कर रहे हैं। तो एक जगहों पर हमने पार्टी से निष्कासन की भी कार्रवाई की है, और स्वाभाविक रूप से ये चिंता का कारण है, इसको स्वीकार करने में हमको कोई गुरेज नहीं।
कल जिन 3 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, उनमें लखनऊ और मेरठ सीटें भी शामिल हैं। लखनऊ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, तो मेरठ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का गृह जनपद। यही नहीं, पार्टी ने नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया है। जानकारों का कहना है कि इसके पीछे सरकारी मशीनरी का प्रभाव तो है ही, भाजपा नेताओं की आपसी गुटबाजी भी है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र त्रिपाठी कहते हैं,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं अंदरूनी हालात के शिकार है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो रणनीति, जो जिस तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, जो धन बल बाहुबल का प्रयोग किया जाता है, उसके सामने कहीं के हथियार डाल दिए हैं, और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी थोड़ा इधर गिरा हुआ। पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को आगे कैसे बढ़ा जाए, इस पर कम चर्चा होती है। अगला अध्यक्ष कौन हो रहा है, डीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर पार्टी के भीतर ही चर्चा होती है। नेता सड़क पर निकलने को तैयार नहीं है।
आपसी गुटबाजी का सबसे दिलचस्प उदाहरण मेरठ सीट पर दिखा, जहां भाजपा ने समाजवादी पार्टी से 2 घंटे पहले भाजपा में शामिल हुए वीरेंद्र यादव को टिकट दे दिया। स्थानीय कार्यकर्ता इससे काफी नाखुश भी हुए, और वही वीरेंद्र यादव चुनाव में नाम वापस लेकर फिर से सपा में चले गए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री राजेंद्र चौधरी इसके पीछे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के भाजपा के आरोपों को खारिज करते हैं।
जनता का या जनप्रतिनिधियों का जो भी इलेक्शन होते हैं, वो बिल्कुल निष्पक्ष है, वो और सरकारी मशीनरी में कहां दुरुपयोग होता है। लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोकसभा में इनके 71 सांसद जीत कर गए।
विधान परिषद चुनाव में भाजपा के आधिकारिक रूप से 21 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं जहां उसकी स्थिति मजबूत है, और कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों पर चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला छोड़कर पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। जानकारों का कहना है कि अब मुकाबला सीधे सपा और भाजपा में है, क्योंकि अब कोई उम्मीदवार चाहकर भी मैदान नहीं छोड़ सकता।
ये थे लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र, और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में कन्हैया कुमार ने खुद को निर्दोष बताया है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। बैठक में ब्रिटेन को EU में बने रहने के लिए क्या प्रस्ताव दिया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। सीरिया में अस्थायी संघर्ष विराम शुरू करने की मियाद आज खत्म हो रही है, लेकिन वहां के ताज़ा हालात को देखते हुए विशेषज्ञ इस बात पर शंका जता रहे हैं कि युद्ध विराम लागू हो भी पाएगा। इसके अलावा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वालिफायर मुकाबले भी आज से शुरू हो रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान, UAE, हांगकांग और ओमान की टीमें हिस्सा ले रही हैं।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भारत के दौरे पर आ रहे हैं। 5 सालों के अंतराल पर यह किसी नेपाली प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है, और वो भी ऐसे समय में जब दोनों ही देशों के बीच संबंधों में तनातनी देखने को मिल रही है। हालांकि भारत आर्थिक नाकेबंदी के आरोपों से इनकार करता रहा है। तराई के इलाकों में मधेशी आंदोलन की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों और दवा सहित कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित रही। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने भारत में प्रवासी नेपालियों के बीच जाकर जानना चाहा कि संबंधों में खींचातानी की वजह से उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा।
ये आवाज अक्सर भारत के विभिन्न शहरों में रहने वाले प्रवासी नेपालियों के बीच से आती है, जो फुर्सत के पलों में अपने गांव और अपनी मिट्टी को याद करते हैं। मगर पिछले कुछ महीनों से नेपाल और भारत के बीच रिश्तों में आई थोड़ी सी तलखी की वजह से इनकी परेशानियां काफी हद तक बढ़ने लगी हैं। वो इसलिए क्योंकि नेपाल के तराई के इलाके में मधेशियों के आंदोलन से उपजे हालात ने आवश्यक सामग्री के आवागमन को पूरी तरह ठप कर दिया था। दिल्ली के मुनीरका गांव में मेरी मुलाकात 65 वर्षीय शानो से हुई, जिन्हें गुर्दे में पथरी हो गई थी और उन्हें इलाज के लिए भारत आने में काफी पापड़ बेलने पड़े।
की तकलीफ है तो
ऐसे क्यों तकलीफ हो जाने, इतना मकई के गिरा है ना आया
पथरी भाती हो
जी।
परेशानी तो हो, ये बोल रहे हैं परेशानी तो हो गया
था। कितने दिन आने में लगा इनको, कितने दिन?
8 दिन लगे।
शानो कह रही थी कि नाकेबंदी की वजह से नेपाल के ग्रामीण इलाकों में आवश्यक वस्तुओं के अभाव ने लोगों की कमर ही तोड़ कर रख दी। वहीं नेपाल के ही रहने वाले वीर बहादुर का कहना है कि वो 30 सालों से भी ज्यादा से भारत में रह रहे हैं, जबकि उनके परिवार के बाकी के लोग नेपाल में रहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐसे बुरे हालात पहले कभी नहीं देखे।
जो वहाँ रहे हैं हमारे जो परिवार जो भाई बंधु जो है उनको तो परेशानी तो हो गई, सबको परेशानी तो सबको नाकाबंदी लगा दिया दोनों पानी का, तो वो तो हो गई। अभी नहीं हुआ पूरा ख़त्म, कहाँ हो गया यहाँ तो मेरे को 30-35 साल से यही ऐसा हुआ नहीं था। जो अब हुआ है बहुत लंबा हो गया, अभी खींच गया ना, पहला तो हुआ नहीं है।
यहाँ के रहने वाले नेपाली समाज के लोगों का कहना है कि 2005 के बाद से ही नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आई है, जब राजा को अपदस्त कर जनतंत्र कायम किया गया।
उसको मद्देनजर रखते हुए जो है राजा ने अपना कदम उठाते थे, उस तरह मंत्रिमंडल को हुक्म देकर काम करता था। अगर मंत्रिमंडल तरफ किसी लुक्स है, कोई गलत पकड़ लिया तो उसको तुरंत हटा देते थे, दूसरे को बैठा देते थे। हाँ, फिर डर के मारे सही काम करता था वो। और माओवादी अच्छा क्यों नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि माओवादी ने जो किया है ना, ये खास करके सबके खिलाफ किया है, गलत काम किया है।
वहीं प्रवासी नेपालियों के संगठन नेपाल एकता समाज के अध्यक्ष लक्ष्मण पंत भी मानते हैं कि राजतंत्र के खत्म होने के बाद से ही नेपाल की मुश्किलें बढ़ी हैं।
मतलब मोनार्की के खत्म होने के बाद में जो भी वहाँ पे डिस्पेंसेशन आया, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, हमेशा मतलब इंडिया से डोमिनेट होने वाला आया, खुल के अपनी बात नहीं रख सकता है। मुझे डाउट है कि ओली जी आ रहे हैं, ठीक है स्वागत करता हूँ मैं, हम लोग स्वागत करते हैं कि रिश्ते अच्छे हों, वो अपनी सत्ता को टिकाने के लिए आ रहे हैं या नेपाल और भारत के संबंधों को सुदृढ़ करके मतलब जनता को राहत देने के लिए, भारतीय और नेपाली जनता के बीच में हार्दिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आ रहे हैं या अपनी सत्ता को लंबा करने के लिए आ रहे हैं, ये तो कहना।
नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे दीपक ग्यावली कहते हैं कि प्रधानमंत्री ओली के भारत दौरे से बहुत उम्मीदें लगाना बेमानी है, क्योंकि उनके दौरे से एक दिन पहले ही मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उन्हें कोई समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने का सुझाव दिया है।
क्या होता है कि बहुत इतना शंका सशंकित है सब लोग कि ए वीक प्राइम मिनिस्टर जाकर कुछ एग्रीमेंट करेगा और फिर बाद में बहुत लफड़ा हो जाएगा। अगर ये लोग का एक दूसरा का मनमुटाव का जो जड़ है उसको पहचान कर उसको निदान करने के लिए कुछ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हैं तो दैट वुड बी इनफ। आई डोंट थिंक वी शुड पुट टू मच होप एंड बिल्ड दिस अप एज अ ग्रेट होप फॉर।
ग्यावली कह रहे थे कि सिर्फ एक ही दौरे से सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मगर भारत को उम्मीद है कि ओली की यात्रा से कई मुद्दों पर बातचीत संभव हो पाएगी और दोनों देशों के बीच संबंध पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
और और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। प्रभात पांडे अखबारों के पन्ने पलटकर स्टूडियो आ चुके हैं। जी प्रभात
जी। पंकज जी, पिछले 3-4 दिनों की तरह एक बार फिर से जेएनयू की खबरें जो है वो सुर्खियां बटोर रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने पहली खबर बनाई है, हेडलाइन दी है जेएनयू सेडिशन केस रो रीचेस प्रणव्स डोर, जिसमें खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला और राष्ट्रपति से बीच बचाव करने की मांग की है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का बयान छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कोर्ट वायलेंस नॉट एन एक्सट्रीम केस, यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट में जो 2 दिन मारपीट हुई उसको बस्सी साहब कोई बड़ी घटना नहीं बताते,
छोटी सी बात है
जी, उनके हिसाब से छोटी सी बात है। ये खबर ये भी छपी है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उनका ये फरमान कल उन्होंने सुनाया है। द हिंदू में कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में कल जो दिल्ली में छात्रों का विशाल जुलूस निकला उसे सुर्खी बनाया गया है। हेडलाइन दी है एससी टू हियर जेएनयू स्टूडेंट्स प्ली टुडे, यानी कि आज कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इसके अलावा हिंदू में एक और खबर है, कांग्रेस में गेन एज बीजेपी एजीपी टाई अप टॉक्स फेल इन असम। असम में जो भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद के बीच सीटों के तालमेल को लेकर जो बातचीत हो रही थी वो फेल हो गई है
और कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता है,
ऐसा द हिंदू का आकलन है। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प सी फोटो छपी है जो सोमवार और बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में वकील पत्रकारों को और छात्रों की पिटाई में जो अगुवाई जिन्होंने की थी विक्रम सिंह चौहान वकील, उनका कड़कड़ डूमा कोर्ट में उनके साथी वकीलों ने
सम्मान किया
जैसे उन्होंने बड़ी बहादुरी का काम किया हो। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कन्हैया सेडिशन वीडियो मे बी डॉक्टर्ड। ऐसी खबरें आ रही कि कन्हैया को जिस वीडियो के आधार पर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, हो सकता है वो वीडियो ही छेड़खानी की गई हो उस वीडियो से और कन्हैया कुमार ने ऐसा कुछ कहा नहीं, जैसी बातें हो रही हैं। दैनिक भास्कर में हरियाणा में जो जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है उसकी खबरें हैं। खबर है कि रोहतक में वाहनों को आग लगा दी गई और तोड़फोड़ हुई है। इसके अलावा कल जो खबर छाई रही फ्रीडम 251, उसको लेकर कि 1 सेकेंड में 6 लाख लोग इसको खरीदने के लिए ऑनलाइन आए और ये साइट ही क्रैश कर गई
और वो कंपनी का कहना है कि जल्दी ही वो वापस लौटेंगे। लेकिन अब हम सुन लेते हैं खेल समाचार रजत चांदना के साथ।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। भारत के स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह की मौजूदगी में आईसीसी T20 विश्व कप की ट्रॉफी कल दिल्ली पहुंच गई। पुरुष और महिला विश्व T20 की ट्रॉफियों की परेड दिल्ली की सड़कों पर विशेष रूप से की गई। युवराज के साथ भारतीय खिलाड़ी पवन नेगी भी इस परेड का हिस्सा थे। आईसीसी विश्व 2020 2016 के दौरे में 8 शहर की यात्रा होगी। विश्व 2020 8 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल को खत्म होगा। वही भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज रांची में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भिड़ेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम को दूसरे वनडे में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाकर सीरीज को पहले ही अपने नाम कर लिया था। वहीं टेनिस में भारत के टेनिस स्टार लियांडर पेस और फ्रांस के जेरेमी चार्डी की जोड़ी डेलरे बीच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पेस और चार्डी की गैर वरीय जोड़ी ने 1 घंटे और 12 मिनट तक चले इस मैच में अमेरिका के चौथी वरीयता प्राप्त एरिक बुटोरेक और स्कॉट लिप्स्काई की जोड़ी को 6-4 7-5 से मात दी। वहीं हैदराबाद में बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने चीन को दी 3-2 से मात।
और कार्यक्रम के अंत में अब समय है प्रमुख समाचारों का।
बीबीसी समाचार। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 21 और 22 मार्च को क्यूबा का दौरा करेंगे। पिछले 90 सालों के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब कोई अमरीकी राष्ट्रपति क्यूबा जाएगा। पोप फ्रांसिस ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए उनकी ईसाइयत पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप के अमरीकी मैक्सिको सीमा पर एक दीवार बनाए जाने के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए पोप ने यह बात कही। एक इराकी अदालत ने अमरीका के पूर्व सैनिक अड्डे पर सेना में भर्ती हुए करीब 1,700 लोगों की हत्या के मामले में 40 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की 2 दिनों की बैठक के पहले दिन कोई खास प्रगति नहीं देखी गई। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि ये यूरोपीय संघ में ब्रिटेन का भविष्य तय करेगी। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं खत्म होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, आपसे ठीक 1 घंटे बाद 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।